नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भाजपा शासित असम में डेरा डाले हुए महाराष्ट्र के विद्रोहियों ने अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी है। अदालत सोमवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, एक शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की, दूसरी उनके खेमे के 15 विधायकों की। याचिकाओं में शिंदे के स्थान पर अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता देने के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के फैसले और शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्यता नोटिस दिए जाने को चुनौती दी गई है। इस मामले को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। शिंदे की याचिका के अनुसार डिप्टी स्पीकर ने चौधरी को SSLP के नेता के रूप में मान्यता दी। विधायिका दल के अल्पसंख्यक गुट द्वारा कथित रूप से किए गए अनुरोध के बावजूद और इसलिए कार्रवाई अवैध और असंवैधानिक थी। वहीं महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। विधायक हों या मंत्री, सभी बागी शिंदे गुट का दामन थाम रहे हैं। अब उद्धव के खेमे में शिवसेना के 3 मंत्री आदित्य ठाकरे, अनिल परब और सुभाष देसाई ही बचे हैं। देसाई और परब विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि एक अन्य कैबिनेट मंत्री शंकर राव खडक क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष पार्टी से हैं। बाकी 8 मंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। ये मंत्री हैं दादा भूसे, गुलाब राव पाटिल, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, राज्य मंत्री शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल येद्रावकर, बच्चू कड्डू। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनावों में बड़ा उलटफेर हो गया। भाजपा ने दोनों लोकसभा सीटों पर सपा को हराकर जीत दर्ज की। दोनों सीटों पर हुए उपचुनावों में एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रचार अभियान से नदारद दिखे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ में शिकस्त झेलनी पड़ी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार में बड़ी भूमिका बहुजन समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन ने भी निभाई। उपचुनावों में दोनों लोकसभा सीट जीतने के बाद भाजपा ने प्रदेश में पहले से ही मजबूत स्थिति को और मजबूत किया है, जो उसे आने वाले लोकसभा चुनावों और स्थानीय नगर निकाय चुनावों में मदद करेगा। उपचुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के अब लोकसभा में सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई है। इससे न सिर्फ आने वाले चुनावों के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को झटका लगा है, बल्कि इससे राष्ट्रपति चुनाव से पहले पार्टी की शक्ति भी कम हुई है। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी सिमरजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह को 5,822 मतों के अंतर से हराया है। जीतने के बाद सिमरजीत सिंह मान ने कहा कि ये जीत हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं और संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की तालीम की जीत है। गौरतलब है कि सिमरजीत सिंह मान को जरनैल सिंह भिंडरावाले की विचारधारा का समर्थक माना जाता है। ऐसे में उन्होंने अपनी जीत का श्रेय भिंडरावाले की तालीम को दिया है। मान का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 1984 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर को खालिस्तानियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इस दौरान खालिस्तानी गुट की अगुवाई जरनैल सिंह भिंडरावाले ने की थी। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने जून 1984 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। सिमरजीत सिंह खुद को भिंडरावाले की विचारधारा का समर्थक बताते हैं। वहीं मान खुद भी ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि 1980 के दौर में उन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके आदमियों की हथियार सप्लाई करने में सहायता की थी। उस वक्त मान फरीदकोट में SSP के तौर पर कार्यरत थे। भारतीय क्रिकेट टीम ने डबलिन के द विलेज मैदान पर रविवार यानी 26 जून 2022 की रात 1:20 पर खत्म हुए मैच में आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह उसने 2 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। मैच में भारत की ओर से दीपक हुड्डा ने पारी का आगाज किया। उन्होंने 29 गेंद में 47 रन की नाबाद पारी खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए रविवार को जर्मनी पहुंचे, जहां भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रविवार शाम को पीएम मोदी ने म्यूनिख में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने आपातकाल का जिक्र करते हुए की। उन्होंने इमरजेंसी को काला अध्याय बताया। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन एक और वजह से जाना जाता है, जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के लिए डीएनए में है, उसे 47 साल पहले आज ही के दिन आपातकाल लगाकर बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल घोषित किया था। उन्होंने आगे कहा, आपातकाल के कालखंड भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों पर भारी पड़ी। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।